अध्याय 16 बौद्ध संघ गणतंत्रात्मक संगठन। महात्मा बुद्ध की संगठनात्मक प्रतिभा का सर्वप्रथम उदाहरण उनके द्वारा बौद्ध संघ की स्थापना है। यह बौद्ध भिक्षुओं के जीवन प्रणाली का नियामक और बौद्ध धर्म का सर्वश्रेष्ठ प्रचारक था। महात्मा बुद्ध का जन्म एक गणतंत्रात्मक राज्य में हुआ था, अतः गणतंत्रात्मक प्रणाली के संस्कार उनके मस्तिष्क पर भली भांति दृढ़ हो चुके थे। यही कारण है कि उन्होंने अपने भिक्षु संगठन का नाम भी गणतंत्रात्मक प्रणाली पर संघ रखा। यहाँ यह बताने की आवश्यकता नहीं कि तत्कालीन राजनीति में संघ एक सुविख्यात संगठन समझा जाता था, यथा वज्जी संघ। महात्मा बुद्ध ने उस राजनीतिक प्रणाली को धार्मिक क्षेत्र में भी कार्यान्वित किया। उनका भिक्षु संघ वस्तुतः एक धार्मिक गणतंत्र था। उसमें समस्त सदस्यों के अधिकार समान थे। वहाँ न कोई छोटा था और न कोई बड़ा। महात्मा बुद्ध ने अपना कोई उत्तराधिकारी भी नियुक्त न किया था। उन्होंने निर्वाण के समय स्वयं कहा था कि आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि तुम्हारे शास्ता चले गए, अब हमारा शास्ता नहीं। आनंद, हमें ऐसा मत समझना, मैंने जो धर्म और विनय उपदेश किए हैं, प्रज्ञप्त किए हैं, मेरे बाद वे ही तुम्हारे शास्त्र होंगे। इसी संबंध में वत्सकार ने आनंद से यह पूछा कि क्या तथागत ने अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं चुना। आनंद के नहीं कहने पर उसने भारी आश्चर्य प्रकट किया और अपना यह भय प्रकट किया कि किसी नेता के अभाव में संघ की एकता नष्ट न हो जाए। इस प्रकार आनंद ने महात्मा बुद्ध के आशय को ही प्रकट करते हुए उसे आश्वासन दिया कि ब्राह्मण, हमें किसी नेता की आवश्यकता नहीं है, धर्म ही हमारा नेता है। इन उद्धरणों से स्पष्ट हो जाता है कि गणतंत्रात्मक प्रणाली के आधार पर ही महात्मा बुद्ध किसी धार्मिक गद्य की अथवा गुरुदम स्थापना नहीं करना चाहते थे। उन्होंने समस्त भिक्षु समुदाय को ही अपना धर्म सौंपा, किसी एक भिक्षु को नहीं। महापरिनिब्बान सुत्तांत का कथन है कि महात्मा बुद्ध ने संपूर्ण भिक्षु संघ को एकत्र कर उन्हें 7 अपरिहरणीय धर्मों का उपदेश दिया था। पहला, भिक्षुओं, जब तक भिक्षु लोग एक साथ एकत्र हो बहुधा अपनी सभाएं करते रहेंगे तब तक भिक्षुओं की वृद्धि समझना हानि नहीं। दूसरा, भिक्षुओं, जब तक भिक्षु लोग एक ही बैठक करते रहेंगे, एक ही उत्थान करते रहेंगे और एक ही संघ के कार्यों को संपन्न करते रहेंगे तब तक भिक्षुओं की वृद्धि समझना हानि नहीं। तीसरा, भिक्षुओं, जब तक भिक्षु लोग संघ विहित नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे, संघ विरुद्ध नियमों का अनुसरण नहीं करेंगे, पुरातन भिक्षु नियमों का पालन करते रहेंगे तब तक उनकी वृद्धि होगी, हानि नहीं। चौथा, भिक्षुओं, जब तक भिक्षु लोग उच्चतर धर्मानुरागी प्रवज्जित संघ के जन्मदाता संघ के नायक स्थवीर भिक्षुओं का सत्कार करते रहेंगे, उनका आदर कर उनकी पूजा करते रहेंगे, उनकी बात को सुनने तथा ध्यान देने योग्य समझते रहेंगे तब तक उनकी वृद्धि होगी, हानि नहीं। पांचवा, भिक्षुओं, जब तक भिक्षु लोग पुनः पुनः उत्पन्न होने वाली तृष्णा के वश में नहीं पड़ेंगे तब तक उनकी वृद्धि होगी, हानि नहीं। छठवा, भिक्षुओं, जब तक भिक्षु लोग वन कुटीरों में निवास करने की इच्छा वाले रहेंगे तब तक उनकी वृद्धि होगी, हानि नहीं। सातवा, भिक्षुओं, जब तक भिक्षु लोग यह स्मरण करते रहेंगे कि भविष्य में अच्छे ब्रह्मचारी संघ में सम्मिलित हो और सम्मिलित हुए लोग ब्रह्मचारी रहते हुए सुखपूर्वक निवास करें तब तक भिक्षु संघ की वृद्धि होगी, हानि नहीं। ये धर्म न्यूनाधिक परिवर्तन के साथ वही है जिनका उद्देश्य महात्मा बुद्ध ने अजातशत्रु के मंत्री वत्सकार को दिया था। अजातशत्रु वज्जी संघ के ऊपर आक्रमण करना चाहता था, अतः उसने अपने मंत्री वत्सकार को महात्मा बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए भेजा था। महात्मा बुद्ध ने उस मंत्री के से यह कहा कि जब तक वज्जी संघ 7 बातों का अनुसरण करता रहेगा तब तक उसका पतन असंभव है। वे 7 बातें प्राय उपयुक्त 7 धर्मों के ही समान थी। इससे स्पष्ट हो जाता है कि महात्मा बुद्ध ने राजनीतिक संघों को अपने धार्मिक संघ के लिए आदर्श समझा था। दोनों का ही संगठन गणतंत्रात्मक था। बौद्ध संघ की कार्यप्रणाली के जो उदाहरण बौद्ध साहित्य में मिलते हैं उनसे भी इस कथन की पुष्टि होती है। कार्यप्रणाली, संघीय कार्य में प्रत्येक भिक्षु के अधिकार समान थे। प्रत्येक संघ कर्म के लिए संघ की उपस्थिति आवश्यक थी, अन्यथा वह कार्य अवैधानिक समझा जाता था। अनुपस्थिति व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के द्वारा अपना मत प्रकट करा सकता था। संघ की सभा में सबके बैठने की व्यवस्था करने वाले पदाधिकारी को शासन प्रज्ञापक कहते थे। प्रस्ताव रखने के पूर्व उसकी सूचना दे दी जाती थी, इस सूचना को ज्ञप्ति कहते थे। प्रस्ताव को कहा जाता था। प्रस्ताव का प्रस्तुत करना अनुसम्मान अथवा कम वाचा कहलाता था। तत्पश्चात प्रस्ताव पर विवाद होता था। जिस विषय पर सदस्यों में मतभेद होता था उसे अधिकरण कहते थे। प्रत्येक सदस्य स्वतंत्रता पूर्वक अपना मत दे सकता था। जो व्यक्ति प्रस्ताव को स्वीकार करते थे वे मौन रहते थे। कभी कभी मत विभाजन शलाकाओं के द्वारा होता था। ये शलाकाएं भिन्न भिन्न रंग की होती थी। जो अधिकारी शलाकाओं का वितरण और संग्रह करता था उसे शलाकागाहक कहते थे। मतदान 2 प्रकार का होता था, गुप्त और प्रत्यक्ष। निर्णय बहुमत से होता था। बहुमत द्वारा हुए निर्णय को ये भूमिसिकम तथा ये भयसियम कहते थे। प्रत्येक प्रस्ताव 3 बार प्रस्तुत और स्वीकृत किया जाता था, तभी वह अधिनियम बनता था। कभी कभी प्रस्ताव विशेष विचार के लिए किसी उपसमिति के सुपुर्द कर दिया जाता था। संघ के अधिनिवेश के लिए कम से कम 20 विशिष्ट सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य थी या कोरम था। इसके बिना प्रत्येक अधिवेशन और अधिनियम अवैध समझा जाता था। संघ का संगठन बौद्ध का विकास स्नेह हुआ था। उसका एक दीर्घकालीन इतिहास है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, प्रारंभ में बौद्ध धर्म के सिद्धांत लिखित रूप में न थे। बौद्धों की संपूर्ण धार्मिक अवस्था निम्नलिखित 4 आधारों पर अवलंबित थी। पहला, भगवती सम्मुखा सुत्तम, स्वयं भगवान बुद्ध के मुख से सुने हुए उपदेश। दूसरा, किसी स्थानीय संघ द्वारा गृहित व्यवस्था। तीसरा, स्थविरों द्वारा गृहित व्यवस्था। चौथा, किसी बौद्ध धर्माचार्य द्वारा धर्म व्याख्या। पीछे कहा जा चुका है कि बौद्ध भिक्षु वर्षा काल को छोड़कर प्राय वर्ष भर धर्म प्रचारार्थ बड़ी भ्रमण किया करते थे। वर्षा ऋतु में ये जिन स्थानों पर निवास करते थे वे आवास के नाम से प्रख्यात हुए। यही आवास कालांतर में स्थानीय संघों के रूप में विकसित हुए। ऐसा अनुमान है कि कालांतर में इन्हीं स्थानीय संघों ने बौद्ध मत मतांतरों को जन्म दिया। इन सब स्थानीय संघों के ऊपर चातुर्दिश संघ था या अखिल देशी संगठन था। प्रारंभ में कोई भी व्यक्ति प्रवज्ञा ग्रहण कर भिक्षु हो सकता और संघ में प्रवेश पा सकता था, परंतु कालांतर में इस उन्मुक्त और निस्सीम अधिकार का दुरुपयोग होने लगा। उदाहरणार्थ, बहुत से अपरिपक्व अवस्था के तरुण क्षणिक भावना के वशीभूत होकर गृह त्याग कर देते और संघ में प्रविष्ट हो जाते थे। कालांतर में वे संघ के कठोर एवं अनुशासनशील जीवन को अपनाने में अपने को पूर्णतः अयोग्य पाते थे। महावग्ग का कथन है कि मगध की जनता अपने बहुसंख्यक नवयुवकों को प्रवज्ञा ग्रहण करते देखकर व्यग्र हो उठी थी। इसी प्रकार इसी ग्रंथ में अन्यत्र उल्लेख है कि बौद्ध संघ में अनेक प्रज्ञान और अनधित व्यक्ति घुस आए थे। बहुत से व्यक्ति संघ में इसलिए प्रविष्ट हुए थे कि जिससे वे जनता के दान की सहायता के संघ में सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। इस प्रकार उनका संघ प्रवेश जीविकार्जन का एक साधन बन गया था। चुल्ल वग में ऐसे कलहप्रिय एवं अपभाषी भिक्षुओं का उल्लेख है जो संघ के अधिवेशनों में व्यर्थ का वाद विवाद करते थे। मिलिंद पन्हो ऐसे परिवारजकों का उल्लेख करता है जो राजा के अत्याचारों से पीड़ित होकर डाकुओं से भयभीत होकर रेडी होने के कारण अथवा जीविकोपार्जन के निमित्त प्रवज्ञा ग्रहण करते थे। मगध नरेश बिंदुसार ने यह आज्ञा प्रसारित की थी कि कोई भी व्यक्ति बौद्ध भिक्षुओं को हानि न पहुंचाए। इस आज्ञा से लाभ उठाने के लिए चोर, डाकू, हत्यारे, रेडी आदि बौद्ध भिक्षु बन गए होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। इस प्रकार के संघ प्रवेश के पीछे कोई धार्मिक भावना न थी। इस प्रकार संघ को असंतोषजनक अवस्था न्यूनाधिक मात्रा में स्वयं महात्मा बुद्ध के जीवन काल में भी हो गई होगी। अतः परिस्थिति सुधार करने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता हुआ कि संघ प्रवेश के लिए कुछ शर्तें बना दी जाएं, और वास्तव में ऐसा ही किया गया। नई नियमावली के अनुसार 15 वर्ष की अवस्था में कम का युवक संघ प्रवेश न पा सकता था। चोर, हत्यारा और रेडी व्यक्तियों के लिए संघ प्रवेश की आज्ञा न रही। युवक के लिए अभी आवश्यक हो गया कि गृह त्याग के पूर्व अपने माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर ले। क्लीवदास और रोगी भी अब संघ प्रवेश न पा सकते थे। नारियों का संघ प्रवेश, नारियों को भी बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने की आज्ञा मिल गई थी, परंतु जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, महात्मा बुद्ध ने यह आज्ञा अनिच्छा पूर्वक और कतिपय शर्तों के आधार पर ही दी थी। ये शर्तें 8 थी। पहला, उन्हें अपने कर्तव्य को भली भांति समझना चाहिए। दूसरा, प्रति अर्धमास उन्हें एक भिक्षा लानी चाहिए। तीसरा, भिक्षु विहीन स्थान पर उन्हें वर्षा काल न व्यतीत करना चाहिए। चौथा, उन्हें भिक्षुओं से पृथक रहना चाहिए जिससे वे उन्हें न देख सके और न सुन सके। पांचवा, वे भिक्षुओं को विपथ न करें। छठवा, वे क्रोध, अपशब्दता और पाप से मुक्त रहे। सातवा, प्रति अर्धमास वे किसी भिक्षु के सम्मुख अपने पापों को स्वीकार कर लें। आठवा, चाहे वह सतायो ही क्यों न हो, उन्हें भिक्षु के प्रति, नवीन शिशु के प्रति भी आदर प्रदर्शन करना चाहिए। उनके आगमन पर खड़ा हो जाना चाहिए और अभिवादन करना चाहिए। आनंद के आग्रह पर नारियों को संघ प्रवेश की आज्ञा देने के पश्चात भी महात्मा बुद्ध ने कहा था कि आनंद यदि तथागत प्रवेशित धर्म विनय नारियां घर से बेघर हो प्रवज्ञा न पाती तो यह ब्रह्मचर्य चीज स्थायी होता। सद्धर्म 1000 वर्ष ठहरता, परंतु चूंकि आनंद नारियां घर से बेघर हुई इसलिए अब यह ब्रह्मचर्य चीज स्थायी न होगा। सद्धर्म 500 वर्ष ही ठहरेगा। परंतु इससे यह न समझना चाहिए कि महात्मा बुद्ध नारी द्रोही थे। वे केवल मानवीय दुर्बलताओं से परिचित थे और न दुर्बलताओं से प्रस्फुटन के लिए अवकाश ही न देना चाहते थे। दीर्घ निकाय में एक स्थान पर वे स्वयं कहते हैं कि नारी में कोई क्षुद्रता नहीं है। एक बौद्ध साधिका सोमा का यह कथन है कि जब चित्त समाधि में स्थित है, ज्ञान विद्यमान है, धर्म का सम्यक दर्शन कर लिया गया है, तो स्त्रीत्व हमारा क्या करेगा। महात्मा बुद्ध की नारी के प्रति विशुद्ध विचारधारा से पूरा मेल खाता है। कालांतर में अनेकानेक विचारों ने धर्म प्रचार में महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण योग देकर महात्मा बुद्ध के इस विश्वास को सार्थक बनाया। इस योग के कारण खमा पटाचारा की किसा गौतमी विशाखादि नारियां भारतीय इतिहास में अमर है। उपसंपदा संघ प्रवेश को उपसंपदा कहते थे। बौद्ध धर्म में इसका वही महत्व था जो ब्राह्मण धर्म में उपनयन संस्कार का। प्रारंभ में महात्मा बुद्ध स्वयं उपसंपदा संपादित करते थे, परंतु जब संघ में प्रवेशार्थियों की संख्या बहुत बढ़ने लगी तो उन्होंने संपदा संपादित करने का अधिकार भिक्षुओं को दे दिया। संघ में प्रविष्ट हो जाने पर भिक्षु को किसी आचार्य के निरीक्षण में रहकर कुछ वर्षों तक अध्ययन करना पड़ता था। इस काल को निस्साय कहते थे। इसका वही महत्व था जो ब्राह्मणों में ब्रह्मचर्य आश्रम का। आवास, देश के भिन्न भिन्न भागों में भिक्षुओं की बस्तियां थी, उन्हें आवास कहते थे। प्रत्येक आवास में प्रत्येक अनेक भिक्षु विहार होते थे और प्रत्येक विहार में भिक्षुओं के निवास के लिए अनेक कक्ष बने होते थे। आवासों का जीवन सामूहिक था। प्रत्येक भिक्षु की सामग्री संघ की सामग्री समझी जाती थी। भिक्षु को व्यक्तिगत रूप से भी जो सामग्री भिक्षा आदि में मिलती थी वह भी संघ में जाकर वितरित हो जाती थी। संघ के पदाधिकारी संघ की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वहाँ अनेक पदाधिकारी रहते थे, यथा पहला भवन, कक्ष, प्राची, कूप आदि के निर्माण कार्य के लिए नवकंपिक, दूसरा खाद्यान्न संग्रह करने के लिए भंडाग्रिक, तीसरा विविध सामग्री खरीदने के लिए कप्पिया कारक, चौथा वस्त्र संग्रह करने के लिए कीवर पत्ती गाहक, पांचवा आराम का प्रधान निरीक्षक आरामामिक। भिक्षुओं के नियम, बौद्ध भिक्षु केवल तीचीवर धारण कर सकता था। अंतरवाशक, उत्तर संघ और संघाटी, ये गिरवा रंग में रंग दिए जाते थे। भिक्षुओं को वस्त्र देने के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया था, इसे कंथीन कहते थे। भिक्षुओं को आदेश था कि वे दिन भर भिक्षाचरण करें और रात्रि में अपने आवास में आ जाएं। रात में वे अध्ययन, अध्यापन, धार्मिक चर्चा और मनन आदि करते थे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि वर्षा काल में भिक्षु अपने आवास में ही रहते थे। वर्ष के शेष 8-9 मास में वे घूम घूम कर धर्म प्रचार करते थे। समय समय पर सारे भिक्षु एक स्थान पर एकत्र होते थे और प्रतिमुख का पाठ करते थे। प्रतिमुख बौद्ध भिक्षुओं के निमित्त विधि निषेधों का संग्रह था। कालांतर में उपोषद का विकास हुआ। कुछ विशेष पवित्र दिवसों पर सारे भिक्षुओं को एकत्र होकर धर्म चर्चा करना ही उपोषद था। इस उपोषद में प्रतिमुख भी पढ़ा जाने लगा। उपोषद में सम्मिलित होने के पूर्व विकृत अपराधों की स्वतः स्वीकृति के द्वारा प्रत्येक भिक्षु को परिशुद्धि करनी पड़ती थी। संघ को अपने भिक्षु सदस्यों के ऊपर पूरा अधिकार था। उसने उनके जीवन को नियंत्रित करने के लिए तथा नियम विरुद्ध कार्य करने वाले भिक्षुओं को दंडित करने के लिए एक विस्तृत विधान बनाया था। उसका विधान राज्य को ही मान्य था। अस्तु, संघ अपने अपराधी सदस्य को सामाजिक बहिष्कार तक का दंड दे सकता था। यह दंड ब्रह्मदंड कहलाता था। दूसरा गंभीर दंड संघ बहिष्कार का था। एक सीमित अथवा निश्चित काल तक का संघ बहिष्कार मानंत कहलाता था। सदैव के लिए किया गया संघ बहिष्कार परिवार कहलाता था, परंतु दंड देने के लिए संघ अपराधी को अपनी निर्दोषिता सिद्ध करने का पूरा अवसर देता था। अपराधी भिक्षु की ओर से इस प्रकार के अवसर दान की जो प्रार्थना होती थी उसे सतिविनय कहते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ साथ बौद्ध संघ का संगठन भी उत्तरोत्तर अधिक विकसित हो गया और एक समय ऐसा आया जबकि उस भिक्षु जीवन को आपूर्ण ढक लिया। बौद्ध संघ विश्व में परिवारजकों का सर्वप्रथम संगठन था और कदाचित सबसे अधिक जनतंत्रात्मक और विकासात्मक भी।